देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला, उजड़े जहाँ चमन में फिर से फूल खिलेगा।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की इस शांति में प्रभु प्रेम, ईश्वरीय परिवार और नया संसार दिखाई पड़ रहा है, अनुभव हो रहा है। शांति में प्रेम, ईश्वरीय परिवार और ईश्वरीय परिवार द्वारा परमात्मा जो नया संसार बना रहे हैं, जिसमें न केवल शांति है, शांति के साथ सुख है और सुख का आधार संपूर्ण पवित्रता है। आज टॉपिक जो हमको दिया है, वो दिया तो दूसरा टॉपिक है, परंतु जो मन की अभी लहर है वो, पर पहले टॉपिक पर बात बोल लूँ ना, फिर मन की लहर, तो लहर में हम सब स्विम करेंगे फिर, है ना, सागर की लहर। पर अभी टॉपिक दिया कि ब्लिस से बैलेंस, बैलेंस से ब्लिस। बैलेंस है तो ब्लिस है। इसको अगर एक मोटे रूप में देखें तो प्रकृति जो है ना, प्रकृति में सदा बैलेंस है, कुदरत में बैलेंस है। कुदरत मतलब खुदरत, जैसे खुदा, खुदरत, प्रकृति, प्रकृति जिसको किसी ने रचा नहीं, पहले से रची हुई है पर फिर से नई रचना होती है। खुदा फिर खुद आके बताते हैं कि मैंने ये रचना कैसे रची, क्या रची, जो बनी हुई थी उसको बना रहा हूं, बनी हुई थी बना रहा हूं, कोई अच्छी चीज बनी हुई है, अच्छी है, परफेक्ट है, उसकी रचना तो परफेक्ट होगी ना। परफेक्ट में कोई तोड़ फोड़ के तो कोई डिफेक्ट ला के परफेक्ट बनाता नहीं है। कोई बिल्कुल अच्छी चीज, मजबूत चीज हो, कोई तोड़ के बनावे, कहते टाइम वेस्ट कर रहे हो, समझदार हो ना, समझदार हो क्या, मतलब उसका उल्टा बोलेंगे ना उसको है? तो परमात्मा सृष्टि रच रहे हैं जो बनी हुई थी पर बिगड़ गई है, नवी थी पुरानी हो गई है, फिर से बना रहे हैं। तो क्या बना रहे हैं इस सृष्टि पर, खुद आके, खुदा खुद आके सृष्टि पर रहने वालों का पहले जीवन बना रहे हैं, लाइफ बन गई हमारी। बाबा आपका बन जाने से हमें न केवल नवी लाइफ मिली है पर हमारी लाइफ बन गई है। लाइफ इतनी श्रेष्ठ बन गई जो अभी अपने ही जीवन पर हमको नाज है, अहंकार नहीं है, नशा है, नाज है कि इस संसार में रहते हुए बाबा ने सिखा दिया, परिवार में रहते हुए वृत्ति को पवित्र बना दिया, संसार में रहते कमल फूल समान जीवन बना दिया, कांटों के जंगल में रहते हमको कांटों के गुलाब का फूल बना दिया। भले कांटे तो उसी झाड़ी पर बहुत है, एक गुलाब का फूल है, फूल एक है, उस फूल की डंडी पर 15 कांटे हैं, 16 कांटे होंगे, कोई पर 20 भी होंगे। तो ऐसे जीवन हमारा कमल फूल समान बना है, परंतु कांटे से फूल बन गए। कीचड़ में थे, कीचड़ में रहते कमल फूल समान बाबा ने बना दिया। लक्ष्य कितना ऊंचा दिया है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा नर नारी, नर और नारी दोनों नर नारायण बन जावे, नारी लक्ष्मी बन जावे। लक्ष्य बहुत ऊंचा दिया है, और लक्ष्य ऊंचा दिया है तो श्रेष्ठ कर्म का फल, जीवन में गुणों की धारणा, लक्षणों की मूर्ति बनने के लिए लक्ष्य दिया है। तो इसीलिए रहना संसार में है, पर नया संसार बना रहे हैं, अपने लिए सुख का संसार बना रहे हैं। फिर से बात आती है बैलेंस की, तो प्रकृति में एक बैलेंस है, सबसे बड़ी चीज देन प्रकृति की, प्रकृति की, ये हमारा अपना शरीर, प्रकृति की देन में ये शरीर प्रकृति का बना हुआ है ना, प्रकृति में ना 5 तत्व, उस 5 तत्व की फिर है फॉर्मेशन, उसमें वो अलग अलग उसकी फॉर्मेशन है, उसका नाम अलग अलग है। समझो प्रकृति कुदरत की चीज, मोटी मिसाल कुदरत में सागर, सागर किसने बनाया नहीं, तो इतना बेहद का सागर है। सूरज किसी ने कोई बैठ के घड़ा नहीं, इतना पावरफुल सूर्य है। अच्छा अभी सागर और सूर्य, सागर में पानी है, सूरज की शक्ति से पानी ऊपर उठ के बादल बन गया, अभी उसका नाम पानी नहीं है, सागर नहीं है, सागर नीचे है, बादल ऊपर है तो वही पानी। फिर वो पानी बरसने लगा तो बादल नहीं है, क्या नाम है भाई, बरसात है। बरसात पहाड़ों पर पानी जम गया, पानी नहीं है, क्या नाम है, बर्फ है। बर्फ पिघल गई, क्या बन गई है? नदी बन गई, राइट। नदी बहती कहाँ आई, सागर में आ गई। तो कुदरत में एक चक्कर है, साइकिल है। तो ऐसे जैसे सृष्टि चक्र है, वैसे 5 तत्वों में भी साइकिल है, चक्र है। ये शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ है, इस 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर है। इस शरीर में अगर बैलेंस ठीक है तो लाइफ ब्लिसफुल है। कैसे मतलब बैलेंस है, अभी अपने शरीर का फोटो आप अपने सामने रखो, तो आपके शरीर में हर चीज 2 है, दिमाग के 2 हिस्से हैं, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन। अच्छा भाई यहां आत्मा बैठी है, अच्छा आंखें 2 हैं, तो ब्रेन का एक लेफ्ट काम करे दूसरा ना करे, राइट ना करे, राइट ज्यादा करे लेफ्ट कम करे, पागल हो जाएगा, है ना। बैलेंस चाहिए, एक आंख देख सके दूसरी ना देखे, सुंदर नहीं लगेगा ना, यानी कमी महसूस होगी ना। कान दोनों ठीक काम ना करे, यानी आप शरीर के रूप को देखो तो बैलेंस है बॉडी में, और ये दोनों ही अगर बराबर हैं, एक टांग छोटी हो दूसरी थोड़ी बड़ी हो, ऐसा होता है कभी कभी ना, फिर चलना कैसे होता है ना? गिर जाना, गिर न जावे। तो प्रकृति के पांच तत्व के बने हुए शरीर में बैलेंस है। अगर ये बिल्कुल बैलेंस में रहते हैं तो है लाइफ हेल्दी है। बैलेंस खत्म हो जावे तो बीमार है। बैलेंस है तो खुशी है। बैलेंस बिगड़ गया, खुशी खत्म हो गई। रूहानी पुरुषार्थ में भी फिर बैलेंस है। ये जीवन शरीर में जैसे बैलेंस है, ऐसे शरीर को चलाने वाली को भी बाबा ने लक्ष्य दिया है बैलेंस का, स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ यानी रूहानियत की लाइफ, नया जीवन दिया है, उसका लक्ष्य है श्री विष्णु स्वरूप, लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है विष्णु। अच्छा, विष्णु जी की मूर्ति को देखो तो दो हाथ ऊपर, दो हाथ नीचे हैं, चार हाथ। तो रिसीव करना, लेना है, जिनको श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है उनके जीवन में भी बैलेंस चाहिए। जो बाबा से मिल रहा है वो जीवन में अनुभव करके देना है। देने में लेना है, खाली लेना हुआ, लिया दिया नहीं, उसमें जो है दुआएं नहीं मिलती। लेके दिया दुआएं मिलेंगी, फिर और मिलेगा। देने से, कल कोई मैगजीन पढ़ रही थी, हाँ, तो देने ले, जीवन में जीवन है ही देने के लिए, तो देने से दुआएं मिलती हैं, देने से बढ़ता है, देने से खुशी होती है। और देने से जितना खाली हो जाते हैं, जितना देते हैं उतना खुशी से भरपूर हो जाते हैं। क्यों? तब ये पता चलता है कि जो चीज बाबा ने मेरे को दी है खाली मेरे लिए नहीं है, ये तो अनेक आत्माओं के लिए है। तो बाबा ने हमारे जीवन में विष्णु लक्ष्य क्यों रखा? संगम पर हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा बाबा हमारा लक्ष्य है, हमको बाप समान बनना है। परंतु ब्रह्मा बाबा ने भी लक्ष्मी शिव ब्रह्मा शिव लक्ष्मी नारायण बनने का रखा, नर से नारायण बनने का रखा। तो मम्मा बाबा को बाबा ने जो लक्ष्य दिया वही लक्ष्य हम बच्चों का है, लक्ष्मणों की मूर्ति बन के रहना। लक्ष्मी का मतलब सर्व गुण संपन्न, गुणों की मूर्ति। नारायण का मतलब जीवन में संपन्नता और दिव्यता की मूर्ति। जब दैवी गुण कर्म में आ गए, जीवन में जो धारण किया वो अगर कर्म में नहीं आया तो संपूर्ण मूर्ति नहीं बनेंगे। सिर्फ सोच लिया, कर्म नहीं किया, वो बढ़ेगा नहीं, फल नहीं मिलेगा उसका। सोच सिर्फ सोच ही रह जाएगा। तो बैलेंस है सोच के साथ कर्म करना, समझ के साथ व्यवहार में आना। खाली प्लान बनाया, प्रैक्टिकल नहीं किया तो कहते तो हम उसके अनुमान के गोल गप्पे खाते रहते। यानी प्रैक्टिकल जीवन, संकल्प और कर्म दोनों का प्रैक्टिकल जीवन। इसीलिए विष्णु जी के जो चार हाथ हैं, वो चारों हाथों में चार सब्जेक्ट का बैलेंस है। हम पढ़ाई जो पढ़ रहे हैं, ब्राह्मण सो देवता बनने का लक्ष्य है, तो पढ़ाई पढ़ रहे हैं लक्ष्य सामने है शिव लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनने का। तो ये रूहानी पढ़ाई, रूहानी बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, रूह को पढ़ाई पढ़नी है। तो अब बैलेंस है आत्मा और शरीर, तो शरीर में कुदरत ने बैलेंस दिया है, पर बैलेंस रखना हमारा काम है। कुदरत ने यह जबान बोलने के लिए दी है, पर ऐसी रखी है कि 32 ईंटों के पीछे, किले के पीछे जबान रखी है। अगर हम आत्मे अंतर्मुखी हैं तो हमारी जो वाणी है ना वो मधुर होगी, कम बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, धीरे बोलेंगे। अंतर मन में मन, अगर आत्मा अपने मन से अपने आप से बात कर रही है तो अपनी चेकिंग करके फिर दूसरे को बोलेगी, कम बोलेगी ना। बाहर मुखता है तो बहुत, बाहर तो बहुत चीजें हैं, कोई आंखों से इन्फॉर्मेशन मिली, कोई कान से इन्फॉर्मेशन मिली, कोई खा के कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ सूंघ के इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ टच से इन्फॉर्मेशन मिली, तो बाहर के रूप से। तो हमारा जो बोल है वो व्यर्थ बहुत जाएगा। पर दर्शन, पर चिंतन और दूसरों के लिए जिसको कहते गॉसिप, निंदा चुगली, ये ज्यादा हो जाएगी। आप देखेंगे संसार में बाहर मुखता आने में हम अपनी एनर्जी बहुत वेस्ट करते हैं, मिसयूज करते हैं। तो ये जो हमारे ऑर्गन्स हैं ये किस लिए हैं? बैलेंस रखने के लिए। इन्फॉर्मेशन तो संसार में रहते हमको मिल रही है, देख रहे हैं। अब देखा हमने तो उसके प्रभाव में मैं आया या डिटैच होके रहा, कानों से कुछ सुना। अब कुदरत ने हिसाब से, तो यहाँ ये सेंसर है ना, ये चेक करने का जगह है, सिक्योरिटी जैसे ऑफिस होता है ना, इमिग्रेशन ऑफिस है यहाँ पर। तो जो व्यर्थ आया है ना उसको अंदर नहीं जाने देना है। जो फालतू चीजें सुनी, कहते फालतू है, अंदर फालतू रख लिया, फिर हमारी एनर्जी जो है वो वेस्ट बहुत होती है। इसीलिए हमको एक हाथ में हमारी एनर्जी वेस्ट ना होवे, ज्ञान को हम ठीक रीति से यूज कर सके, तो हमको अंतर्मुखी मतलब स्वदर्शन चक्कर, परदर्शन नहीं, आत्मदर्शन। आत्मदर्शन यानी मुझे आत्मा का दर्शन, तो मैं सिर्फ आत्मा हूं ये नहीं, पर मैं आत्मा अभी इस शरीर में बैठी हूं, अभी मेरी स्टेज क्या है। परंतु जब मैं सारे चक्कर में अपने आप को देखती हूं तो मैं आत्मा परम धाम में कैसी थी, बाबा के साथ चमकता सितारा, चेतन जागती ज्योत। चाहे कलयुग वाली आत्मा भी अपने स्वरूप में पवित्र थी ना। तो जब मैं अपना उस स्वदर्शन, उस बैलेंस वाले, उतनी ऊंची स्टेज को, उस वैल्यू को सामने रखूंगी, तो अभी जो मेरी कमजोरी है उसको खत्म करने का लक्ष्य रखूंगी ना, फिर ऐसा ही मुझे बनना है। वहां मैं कैसी हूं, परम धाम वाली जो मैं आत्मा हूं मैं अपने उस स्वरूप में देखूं, तो खाली योग में बैठ के तो मैं परम धाम वाली आत्मा नहीं हूं ना। शरीर में रहते मैं आत्मा तो वही हूं जो परम धाम वाली हूं। वो परम धाम वाली शांति का मुझे अनुभव करना है। परम धाम में मैं आत्मा पवित्र थी, फिर सतयुग में मैं आत्मा प्रकृति में रहते पवित्र थी, परम धाम में न्यारी आत्मा प्रकृति के प्रभाव में नहीं है इसलिए पवित्र थी, परंतु सतयुग में जब मैं शरीर में आई तो मेरा अंग अंग पवित्र था। तो अभी कॉन्ट्रास्ट एक्सक्यूज मी, इसलिए अपना कॉन्ट्रास्ट देखेंगे ना, तो अभी स्वदर्शन, तो स्वयं का दर्शन परमधाम वाली आत्मा में कैसी, शांत शुद्ध। फिर सतयुग वाली आत्मा में कैसी, पवित्र, एक एक अंग पूजनीय मूरत, देवताओं के चरण भी पूजे जाते हैं तो हाथ भी पूजे जाते हैं तो नैन भी पूजे जाते हैं। तो हमारा हम प्रकृति में रहते, इस शरीर की प्रवृत्ति में रहते हुए भी शरीर और आत्मा दोनों पवित्र। इसका मतलब यह है कि हमको न केवल आत्मा का ज्ञान परंतु सृष्टि चक्र का ज्ञान। फिर सृष्टि चक्र का ज्ञान देने वाला कौन, तो सुदर्शन चक्र ऐसे तो नहीं फिरेगा ना, सुदर्शन चक्र में उंगली ऊपर होगी तो चक्कर फिरेगा, उंगली टेढ़ी होगी तो चक्कर नहीं फिरेगा। तो स्वदर्शन चक्र में बाबा ने हमको अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराया है, तो उस स्वरूप और इस स्वरूप में अभी अंतर कितना आ गया। बाबा नवी सृष्टि रचने आए हैं, पुरानी को बदल करके नवी बनाने आए हैं, दुखी को सुखी बनाने आए हैं, पतित को पावन बनाने आए हैं, बंधन वाले को मुक्ति देने आए हैं। एक कॉन्ट्रास्ट है ना, इसलिए वो ज्ञान, जितना जितना हम ज्ञानी तो आत्मा बने, तो ज्ञान के साथ साथ उस गुण जो हमको ज्ञान मिला उसका अभ्यास। बाबा ने आज भी कहा कुछ और नहीं, मैं एक ही तुमको युक्ति बताता हूँ, एक ही सेकंड में बताता हूँ, मुझे याद करो। तो याद क्या, खाली बाप को बिंदु रूप को याद करने की बात नहीं, पर बाबा के ऑक्यूपेशन सहित उनको याद करो। तो भक्ति मार्ग में हमने ऑक्यूपेशन से नहीं याद किया, महिमा से तो याद किया, परंतु वो प्रैक्टिकल में परमात्मा का कर्तव्य कब चलता है, कैसे चलता है, कितना समय चलता है, परमात्मा के गुण हैं, वो गुण पतित पावन है तो पतित पावन सतयुग में, परमात्मा पतित पावन नहीं है, कलयुग के अंत में वो पतित पावन है, सतयुग में कोई उनकी महिमा दुख करता सुख करता नहीं है, यहाँ अब संगम के समय अभी दुख करता सुख करता है, मुक्तेश्वर है, इस समय पाप के बंधनों से विकारी कर्म बंधन में हम बंधे हुए हैं, हमको मुक्त करते हैं। तो स्वदर्शन चक्र में खाली ज्ञान नहीं है, अभ्यास हमारा जीवन उसका आनंद तब आता है जब हम उसी का योग, जो सुनने हमने सुना ना उसका हम अभ्यास कर रहे हैं, योग लगा रहे हैं। थैंक यू। योग युक्त होकर के मैं आत्मा परम धाम वासी हूँ, तो परम धाम वाली शांति को स्मृति में रख के निर्वाण धाम, तो वहां वाणी नहीं है, परंतु अभी मेरे मन को भी मुझे व्यर्थ चिंतन में नहीं रहना है, स्वचिंतन में रहना है। तो स्वचिंतन में चिंता नहीं है, स्वचिंतन में जो मैं अपने स्वरूप का दर्शन कर रही हूं उसका अनुभव करें, तो फिर ज्ञान और योग का बैलेंस हो जाएगा। यानी जो ज्ञान मिला ना उसको योग में परिवर्तन कर देवे, आत्मा का ज्ञान मिला, ये समझ मिली कि मैं आत्मा हूं। अच्छा, एक बात ये समझ मिली कि मैं आत्मा हूं, फिर ये भी तो ज्ञान मिला तू भी आत्मा है। तो मैं कितनी देर तक ये बैलेंस रख सकती हूं कि मैं अपने को अपने को मैं आत्मा देखूं, और जब मैं देख रही हूं ना दूसरों को, शरीर तो दिखाई पड़ रहा है, पहचान के लिए शरीर का रूप भी समझ में आ रहा है, याद आ रहा है, समझ भी है ये बहन है ये भाई है, ये नहीं है कि उसका शरीर का रूप नहीं दिखाई पड़ रहा है, पर शरीर के रूप को देखते हुए मैं दूसरी आत्मा को आत्मा समझ करके कितना बात करती हूँ, ये बैलेंस हो जाएगा ना। फिर जैसे मैं बताया शरीर है, तो शरीर में दोनों आंखें काम करें बराबर, दोनों हाथ ठीक काम करें, दोनों पैर ठीक काम करें, तो ऐसे ये आत्मा को आत्मा ये ज्ञान मिला कि मैं आत्मा हूँ, स्वदर्शन मैं आत्मा हूँ, तो ये भी ज्ञान मिला ना तुम भी आत्मा हो। तो बाबा कई बारी मुरली में कहते मैं आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, किनसे बोल रहा हूँ, हे आत्माएं बच्चे, परमपिता परमात्मा आत्माओं से बात कर रहे हैं। तो बाबा परमात्मा होते हुए भी आनंद का सागर क्यों है कि हमको देह रूप में नहीं देखता, हमको भी आत्मिक रूप में देखते हैं। तो जब हम आत्मिक रूप में हमें दूसरे को देखते हैं, तो बुद्धि का नेत्र बेशक कमी या कमजोरी को देख भी रहा है, पर कमी कमजोरी का असर अपने पर नहीं आने देता, दिखाई भी पड़ रहा है परंतु उसका प्रभाव हमारे पर ना पड़े। अभी जब हम देह भान में आते हैं तो कमी दिखाई भी पड़ी, उसका प्रभाव भी पड़ा, तो वो एक्स्ट्रा हो गया ना उसका असर, फिर हमको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी ना उससे उसको हटाने की। इसीलिए जितना ज्ञान है वो ज्ञान के अभ्यास से, हमारी धारणा से हमको बैलेंस हो जाएगा। ज्ञान धारण करने की चीज है ना, धारण क्या करना है, ज्ञान को धारण करना है, मैं आत्मा हूं, तो ये अभ्यास ये धारणा ना, मैं कैसी आत्मा हूं, शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो ये धारणा शांति मेरी धारणा हो गई ना, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं तो प्रेम का व्यवहार ये मेरी धारणा हो जाएगी ना, शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, परिस्थिति में रहते हुए मैं विघ्न विनाशक बन के रहूं, परिस्थिति पर मेरी स्व स्थिति ना बिगड़े। तो इसीलिए ज्ञान को पहला बैलेंस है, ज्ञान को योग बना लेने, ज्ञान जितना ज्ञान ना उतना योगी, ज्ञानी भी हो और योगी भी हो, ज्ञान बहुत बोले और योग योग युक्त नहीं होगा तो कहेंगे बोलता बहुत है अभ्यास तो कम है, अनुभव दूसरों को नहीं हो सकेगा। फिर ज्ञान है मैं दूसरों को बता रही हूं और मैंने धारण नहीं किया, मेरा व्यवहार नहीं बदला है, तो न मेरे पास खुशी होगी न दूसरे के पास खुशी हो सकेगी। फिर स्वयं की सेवा और दूसरों की सेवा, बाबा कहते हैं ना केवल स्वयं की सेवा दूसरों की सेवा भी करो। तो हमको ऐसे हर हर एस्पेक्ट में निराकार और साकार का बैलेंस, आत्मा निराकार है, निराकार स्वरूप के गुणों को हम साकार में कितना यूज करते हैं, तो अब अगर अटेंशन देंगे तो साकार में परहैप्स किसका 80%, किसका 90%, किसका 70% अटेंशन, योग में कितना है 80% रहते हैं। अगर 80% व्यवहार में आता है, चलो 8 घंटा सोए हमने ध्यान नहीं दिया, सोए हैं ठीक है, दिन में बाकी सवेरे से लेके शाम तक तो हम एक्शन में है ना, तो ज्यादा हमने कौन से किस पर ध्यान दिया, ज्ञान याद रखा पर ध्यान किस पर दिया, ज्ञान याद रहा मैं आत्मा हूँ, ध्यान दिया मैं आत्मा हूँ, ये पता है ये भी आत्मा है, मैंने आत्मा समझ करके बात तो नहीं की। तो इसीलिए हमको अभ्यास, जितना जितना हम अभ्यास करते जाएंगे उतना हम अनुभव स्वरूप बनते जाएंगे। तो ज्ञान को योग बनावे, योग को धारणा बनावे, उसका रिजल्ट धारणा में आ जाएगा, धारणा का रिजल्ट सर्विस। तो ये आपस में बैलेंस्ड है, कभी ज्ञान स्वदर्शन चक्र को बैलेंस रखें लोटस फ्लावर की तरह, कभी ये जो दो राइट हैंड है ज्ञान और योग की गदा, ये चारों अलंकार है ना विष्णु जी के, चार अलंकार, ये चार सब्जेक्ट्स है ना जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट चारों अलंकार जो हैं, ये कोई ऐसे नहीं कोई फैशन है सभी देवताओं के पास, देवता बनने वालों के पास ये चार अलंकार है। तो हम जो मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो ये चार सब्जेक्ट का बैलेंस सबको अपने जीवन में रखना है। और चार सब्जेक्ट कौन से, तो ये चार सब्जेक्ट के नाम तो हम सबको पक्का पक्का हो गया, कौन सा सब्जेक्ट कौन सा है विष्णु जी के हाथ में, तो स्वदर्शन चक्र ये ज्ञान है, स्वदर्शन चक्र, चक्र का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान, बाबा का ज्ञान, स्वदर्शन चक्र एक ज्ञान। बाबा कहते हैं मैं तुमको आके क्या बताता हूँ, रचता और रचना का ज्ञान देता हूँ। अच्छा, अब उस ज्ञान से हमको वो नॉलेज लाइट मिल गई, पर वो शक्ति कब बने, ज्ञान है पर ज्ञान को ज्ञान स्वरूप बने तो उस स्वरूप को मैं देखूं, स्वरूप ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्रता स्वरूप, शक्ति स्वरूप, वो फिर जितना जितना हम इसी ज्ञान को लाइट को माइट बना देंगे तो योग शक्ति है और शक्ति की निशानी गदा है, योग शक्ति कहा जाता है, योग बल कहा जाता है, योग बल से भी कर्म विनाश होते हैं, योग बल से हम आत्माएं जो है माया जीत बनती है। इसलिए हनुमान जी के हाथ में, भीम के हाथ में, गदा के, गणेश जी के हाथ में, बहुत बड़ी गदा दिखाते हैं यानी विजय प्राप्त करने वाली। योग बल से हम माया जीत बनते हैं, ज्ञान बल से माया जीत नहीं बनते, ज्ञान से समझ में आता है ये माया क्या है, विकार क्या है। इसलिए गदा है शक्तिशाली बनने की, महावीर बनने की। चलो हम महावीर की निशानी फिर क्या है, चलो मैंने योग भी लगा लिया, ज्ञान में भी बहुत होशियार हो गई, पर दूसरों के वचन ने मेरे पर असर कर दिया, कड़वा वचन किसने बोला या किसी ने अपमान किया या किसी ने दोष दिया मुझे किसी बात पर, मेरे अवगुण देख करके उस वातावरण में लाया, तो उनकी कमी का मेरे पर असर पड़ गया, तो उनकी कमजोरी नहीं ये मेरी कमजोरी हो गई ना। तो शक्ति की निशानी है कि मेरे पर किसी की कमजोरी का असर ना पड़े, इसका मतलब यह है कि मैं अपनी कमजोरी को तो खत्म करूं पर दूसरे की कमजोरी को भी खत्म कर दूं, उससे न्यारी रहूं, तब कहेंगे इसकी धारणा बहुत अच्छी है, ज्ञान भी अच्छा है, योग भी अच्छा है, धारणा बहुत अच्छी है। कुछ भी हो जावे अपसेट नहीं होते, कुछ भी हो जावे कभी मान अपमान निंदा उस्तति लाभ हानि जय पराजय में समान रहते हैं। कैसी भी परिस्थिति आवे स्वस्थिति नहीं बिगड़ती। तो वो क्या हुआ, संसार में रहते हुए संसार से न्यारे रहे ना। तो ज्ञान को फिर धारणा से भी बैलेंस करना है, योग से भी बैलेंस करना है। योग को फिर योग का रिजल्ट क्या है, धारणा। अगर धारणा नहीं है तो बाबा कहते योग की कमी है, धारणा नहीं है योग युक्त तो नहीं है। और प्रैक्टिकल में देखेंगे योग मदद करता है धारणा स्वरूप बनने का। मानो अभी हम योग में बैठे, आप योग करा रहे हैं और सचमुच आप बिल्कुल आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है। चलो आनंद स्वरूप भी नहीं, शांत स्वरूप भी नहीं है, कोई चिंतन चल भी रहा है और आपके बारे में कोई कुछ बोल रहा है, आप क्या ध्यान करें उस वक्त, उठ के बोलेंगे तो नहीं। आप योग करा रहे हैं उसको कहेंगे चुप हो जा, क्यों मेरे लिए ऐसे बोल रहे है? मन में आएगा, मुख से नहीं बोलेंगे ना। शक्ति यानी कान ने सुन भी रहा है, आंख से कोई आपस में आपके लिए कुछ बोल भी रहे हैं, पर आप योग युक्त योग करा रहे हैं, कैसा रिएक्ट करेंगे आप उस वक्त? रिएक्ट करेंगे, इसका इफेक्ट कम होगा आप पर। समझो ठीक है उसे, मैं तो योग युक्त होके रहूं। यानी योग का बल आपको धारणा स्वरूप बना देता है। योग युक्त हैं तो हमारे में शक्ति है, सहन शक्ति है। योग युक्त हैं तो परिवर्तन करने की शक्ति, न्यारा रहने की शक्ति है। तो ये हम किसने ज्ञान से भी बैलेंस कर सकते धारणा को और योग से भी बैलेंस कर सकते धारणा को, और सब ब्लिसफुल रहेगी। वो उनका स्वभाव है, मैं अपने स्वभाव को क्यों बदलूं? तो ज्ञान को यूज किया ना योग में, बाबा से शक्ति ली, ज्ञान को यूज करके दूसरों के प्रभाव से कम से मुक्त हो गए। कर्म का हिसाब किताब और नहीं बनाया, यानी योग से पिछले विकर्म विनाश होते हैं, धारणा से अभी के कर्म भी श्रेष्ठ है, फ्यूचर के कर्म भी श्रेष्ठ बनते हैं। फ्यूचर का कर्म नहीं बनाते और अभी भी अपने आप को सेफ रख सकते हैं। धारणा में किसी से दुख लेंगे नहीं, दुख देंगे भी नहीं। तो जितना जितना हमने पहले दुख लिया भी सही, तो दुख दिया भी बहुत। अभी बाबा ने कहा किसी को दुखी मत करो, आज कहा ना किसको दुख मत दो। उसका आधार क्या है, दुख लेना ही बंद कर देंगे तो देंगे किसको, देंगे ही नहीं ना। पहले हमको आदत बहुत थी दुख लेने की, तेरे से भी दुख लिया, मेरे से भी दुख लिया, परिस्थिति से भी दुख लिया, कोई अपने आप से भी काम सफल नहीं हुआ तो अपने आप को दोष दे के दुखी किया। इतना सारा दुख इकट्ठा कर लिया, लेते जावे आत्मा में ताकत तो है नहीं हजम करने की, तो क्या करेंगे? नहीं हजम करेंगे तो उल्टी करेंगे ना। जहां तहां फिर हर जगह बोलेंगे। समाने की शक्ति नहीं होगी, सहन करने की शक्ति नहीं होगी। समझा, किससे हमने बैलेंस किया? ज्ञान को योग से बैलेंस किया, और ज्ञान और योग डबल शक्ति को, ज्ञान और योग को गुण और शक्ति से बैलेंस किया। यानी न्यारा रहने की शक्ति, समा लेने की शक्ति, समेट लेने की शक्ति, भस्म करने की शक्ति। तो हम मास्टर सर्वशक्तिमान, सारी ज्ञान स्वरूप नहीं, ज्ञान नहीं, खाली ज्ञानी नहीं, ज्ञानी तो आत्मा बन गए, योगी नहीं, योगी तो आत्मा बन गए, कर्म योगी नहीं, श्रेष्ठ कर्म करने वाले बन गए, कर्म करते कर्म के बंधन से मुक्त बन गए। तो योग युक्त बंधन मुक्त, कर्मों का बंधन नया भी नहीं बना रहे और श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं तो फ्यूचर बना रहे हैं, तो बैलेंस हो जाएगा, पिछला भी भस्म हो रहा है और अभी भी जो श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं उससे भविष्य बन रहे हैं, अभी भी श्रेष्ठ कर्म, भविष्य में भी श्रेष्ठ कर्म। कर्म फल, फिर जो हम महावाक्य भगवान के सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, ईश्वरीय मधुर बोल हमको भी सुख देने वाले हैं, दूसरों को भी सुख देने वाले हैं, हम स्वयं भी चेतन जागे हुए हैं, दूसरों को भी जगा रहे हैं, दूसरों को जो संदेश सुना रहे हैं भगवान के, जो शंख ध्वनि कर रहे हैं, यह वो सेवा है ना चौथा। तो तीसरा सब्जेक्ट धारणा, कमल का फूल, ये दोनों, ज्ञान को योग से बैलेंस किया, फिर ज्ञान और योग को धारणा से बैलेंस किया, फिर योग और धारणा हमारी है, ज्ञान भी है, गुण भी है, योग भी है, धारणा भी है, सेवा करने की जरूरत है, दूसरों को अपने आप ही सेवा हो गई ना उनकी। बाबा कहते मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं, तो बाबा को स्थूल सेवा करते हैं क्या? बाबा के जो जो बाबा का स्वरूप ज्ञान है वो भी हमारी सेवा कर रहा है, बाबा का प्यार हमारी सेवा कर रहा है, ये प्यार से सेवा, बाबा के गुण ही सेवा कर रहे हैं ना। तो जब हम इतना कर्मातीत स्थिति में स्थित होकर हुए, कर्म करते कर्मातीत रहे, कर्म भी करें कर्मातीत भी रहे, तो बैलेंस हो जाएगा ना। कर्म योगी भी रहें और ऐसे कर्म करें जो दूसरों को प्रेरणा भी देवें। फिर जो दूसरों को संदेश दे रहे हैं अपने आप को भी संदेश दे रहे हैं, जो अपने आप को दूसरों को सिखा रहे हैं वो स्वयं स्वरूप बन के सिखा रहे हैं। शंख ध्वनि क्या है? सेवा है ना। सोया हुआ तो दूसरे को नहीं जगाएगा, जागा हुआ जगाएगा ना। तो हम केवल दूसरों को नहीं सुना रहे ज्ञान, अपने आप को सुना रहे हैं। जितना हम दूसरों को सुना रहे हैं, दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं ना, जल्दी सुने फौरन इनको निश्चय हो जावे, तो मेरे निश्चय से उनको निश्चय होगा ना, हमारे निश्चय की पक्काई से उनको ऑटोमेटिकली प्रेरणा मिलेगी, हमारी धारणा से उनको धारणा की प्रेरणा मिलेगी, हमारी शुभ भावना से उनकी भावना भगवान के प्रति बैठेगी, हमारी ज्योत जगी हुई होगी तो उनकी ज्योत जगाएंगे, आनंद मौज में रहेंगे तो दूसरों को आनंद अथवा खुशी का वरदान दे सकेंगे। तो ये चारों सब्जेक्ट का बैलेंस ही ब्लिसफुल लाइफ है। तो शंख क्या है? सेवा का सब्जेक्ट है। स्वदर्शन चक्र ज्ञान, गदा योग की शक्ति, कमल फूल समान धारणा का स्वरूप, कमल नयन कमल हृदय, कर कमल चरण कमल, यानी न्यारा, उस मिट्टी न लगे, कीचड़ न लगे, इमोशंस हम पर किसी हमारे किसी के भी हमारे पर असर न करे, नेगेटिव कोई प्रभाव हमारे पर न पड़े, खिले रहें, खुशी खुश रहें, कांटों में रहते खुशी बांटे, खुशबू बांटे, धारणा हो गई ना ये। और फिर बाबा कहते सेवा भले दूसरों की करो, परंतु ये देखो अपनी स्व सेवा से दूसरों की सेवा होगी कि नहीं। फिर याद में भी निराकार को भी याद करें, बैलेंस है। चलो ज्ञान मिला तो ज्ञान में जितना हम आत्मिक स्मृति में रहे उतना परमात्म स्मृति में रहे, यानी आत्मा खुद को देखे दूसरे को देखो, ये ज्ञान का बैलेंस। योग के बैलेंस में फिर जितना निराकार को याद करे उतना साकार को फॉलो करे, बैलेंस है योग में, फिर बैलेंस है। याद निराकार को करना है, फॉलो साकार को करना है। तो ब्रह्मा बाबा कैसे शिव बाबा को याद करते थे, ब्रह्मा बाबा ने कैसे अपना जीवन समर्पण किया, ब्रह्मा बाबा कैसे नष्ट मोह बन करके रहे, तो फॉलो करना ब्रह्मा बाबा को, याद करना शिव बाबा को, तो हमारा जीवन ऑटोमेटिकली बैलेंस वाला हो जाएगा। निराकार और साकार दोनों को, दोनों की शक्ति हमारे पर काम करेगी। अच्छा, फिर न्यारा रहना है कमल फूल के समान, तो बैलेंस रखनी है, न्यारा भी रहे और उतना प्यारा भी रहे। न्यारे का मतलब ये तो नहीं कि सबको रिजेक्ट कर देना है, नहीं, हमारा रहने का, सुनने का, बोलने का संबंध दुनिया से न्यारा है, मोह ममता वाला नहीं है, पर शुभ भावना और प्रेम वाला है। संसार में रहते मोह जाल में नहीं फंसे हुए हैं, परंतु आत्मिक भाव में इनका भी कल्याण हो। मोह बंधन है, ईश्वरीय प्रेम जो है वो संबंध है। तो प्रैक्टिस हो जाएगी ना, इसका बैलेंस हो जाएगा। जितना हम देह के संबंधियों में हमारा अटेंशन था, अभी देह के बदले हम वो देह के जो संबंधी जिन पर हम निर्भर थे, हम वही सब संबंध परमात्मा के साथ जोड़े तो बैलेंस हो जाएगा ना। कीचड़ का फूल का मतलब क्या है, न्यारा रहना। तो देह के संबंधों से न्यारा और ईश्वरीय संबंधों में बाप का इतना प्यारा, जो हमको शक्ति मिल जावे संसार में रहते न्यारा और प्यारा बन के रहने की। इसका मतलब बैलेंस करना है कि वो जो सब संबंध पहले मनुष्यों के साथ थे तो उससे हम बंधन में बंध गए थे, अभी वो ही संबंध परमात्मा से जोड़े तो जीवन मुक्त बन जाएंगे ना। तो जीवन बंध कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त और ईश्वरीय कर्म संबंध से युक्त, परमात्मा से सर्व संबंध। तो देह में रहते देह के संबंध से न्यारा, परंतु सर्व संबंधों का रस अनुभव करने वाला प्रभु प्यारा। देह के संबंध से न्यारा और सर्व संबंध परमात्मा के साथ अनुभव करने वाला, तो प्रभु का भी प्यारा सर्व का भी प्यारा बन जाएगा। तो हर चीज में इस प्रकार से अगर हम बैलेंस रखते हैं तो लाइफ जो है वो ब्लिसफुल बन जाती है, यानी सुख देने वाली बनती है, नहीं तो बंधन बन जाता है। कर्म बंधन बन जाता है, कर्म कर रहे हैं पर बंधन है। तो कर्म करना मने नहीं है, पर बैलेंस रख के करने का है। समझो मिसाल के तौर पर कर्म एक रस्सी की तरह, मैं बंधन क्यों बना कि रस्सी जैसे बंध बांध लेती है। तो मानो आपके पास एक छोटी सी रस्सी है, बचपन में रस्सा कूदने खेला होगा ना, किसने चाहे छोटे जब छोटे छोटे थे तो रस्सी कूदने खेलते थे, छोटे थे तो रस्सा कूदना खेला ना। अच्छा क्या था उसमें, उस सीक्रेट क्या था, आपने दोनों ही साइड में, ऐसा तो नहीं एक तरफ बहुत ढीला रखा बहुत दूसरा बहुत कस के रखा, नहीं, उस छोटी सी रस्सी को आपने बैलेंस में रखा तो पैरों के नीचे से गया सिर के ऊपर से आ गया, पैरों के नीचे से गया सिर, अब वो रस्सी का बैलेंस ने ब्लिस पैदा कर दिया ना, एक तरफ ढीली हो दूसरी तरफ कसी हो तो कूद नहीं सकेंगे ना, गिर जाएंगे। वही रस्सी आपने झूला बनाया, झूले में भी एक ऊपर रखो एक नीचे रखो, आनंद नहीं आए। अभी आपको कूदने की जरूरत नहीं है, आप आराम से बैठे हैं, सिर्फ एक पैर का थोड़ा दबाव लगाओ, अब झूल रहे हैं, आनंद का झूला झूल रहे हैं, सुख का झूला झूल रहे हैं, खुशी का झूला झूल रहे हैं, बैलेंस है। उन दोनों रस्सियों को आपने बांध दिया, तो ज्ञान और योग दोनों को संबंध बना दिया ना, ज्ञान का योग से संबंध है, योग का ज्ञान से संबंध है। तो ज्ञान और योग जब दोनों आपस में जुड़ गए तो हमको बाबा से, खाली हम जो ज्ञान सुन रहे हैं सुन नहीं रहे पर बाबा से बात कर रहे हैं, किसी और को नहीं सुना रहे, बाबा ने जो हमको सुनाया वो अपने आप को सुना रहे हैं। तो सुनने के साथ समझो हम सोच भी रहे हैं, तो सोच सुनना और सोचना, जो ज्ञान सुना वो ही सोचेंगे तो परचिंतन खत्म हो जाएगा ना। ज्ञान में जो बाबा हमको दिखा रहा है परम धाम कौन सा है, सतयुगी दुनिया कौन सी है, उसको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, योग ऑटोमेटिकली लग जाएगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी क्या। तो ये आप प्रैक्टिकल में देखेंगे कि जैसे शरीर की इन ऑर्गन्स का बैलेंस ही हमको हेल्दी बनाता है, योग हमको हेल्दी बनाता है। तो ये ज्ञान को योग में बदली किया, खुशी जीवन में आ जाएगी, ज्ञान मंथन चलना शुरू हो जाएगा, मंथन चलना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली व्यर्थ चिंतन खत्म हो जाएगा। आत्मदर्शन शुरू करेंगे पर दर्शन खत्म हो जाएगा, मैं अगर दूसरे का दोष देख रही हूँ और सोच रही हूँ मेरे में इसके कॉन्ट्रास्ट में है, मेरे में भी तो ये अवगुण है ना, अपने आप को देखेंगे पहले फिर दूसरे को देखेंगे तो दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, सिंपति रखेंगे ना। दर्पण बन जाएंगे ना, अपने आप को दर्पण ऐसे देखेंगे तो पहले अपनी चेकिंग हो जाएगी तो दूसरे पर स्नेह की दृष्टि, क्षमा की दृष्टि, प्रेम की भावना मन की बदल जाएगी। तो न केवल ज्ञान बुद्धि तक ठहरा, मन में भावना में बदल गया, प्रेम भावना के साथ साथ गुण व्यवहार में आ गया। तो ये एक चीज, इन चारों ही सब्जेक्ट का बैलेंस है। और बैलेंस फिर भाई प्रवृत्ति में रहते, गृहस्थी में रहते, ट्रस्टी होके रहने का बैलेंस है। गृहस्थी होके रहेंगे तो चिंता रहेगी, ट्रस्टी होके रहेंगे बाबा करा रहे करण कराम, और ही एक्टिव ज्यादा होंगे, चिंता कम होगी, चिंतन अच्छा चलेगा। तो अपने संबंध के साथ गुणों का और ज्ञान का संबंध, यानी व्यवहार रिश्तेदारों के साथ संबंध में भी फिर ज्ञान को यूज करेंगे ना, न केवल अपने लिए यूज करेंगे दूसरे के लिए भी यूज करेंगे, वो भले ना करें पर मैं तो यूज करूं ना। तो जितना मैं ज्ञान अपने लिए अपने आप को सेफ रखने के लिए यूज करती हूँ उतना, यानी बाबा से संबंध जोड़ने में यूज करती हूँ, इतना दूसरों से संबंध में रहते हुए न्यारा होने के लिए यूज करूं, बैलेंस हो जाएगा ना। ड्रामा में दूसरे आत्मा को साक्षी होकर के देखना, उसका बैलेंस बाबा को साथी बनाना। तो जो कई बाबा ने शब्द बोले ना, न्यारा और प्यारेपन का बैलेंस, साथी और साक्षीपन का बैलेंस, निराकार और साकार का बैलेंस, तो जो भी ज्ञान मिला है वो वास्तव में हमको बैलेंस रखने के लिए ही मिला है ना। नहीं तो ट्रस्टी होके नहीं रह सकते, ग्रस्ती रहेंगे, फंसे रहेंगे ना। परंतु ट्रस्टी होकर के रहते हैं तो बाबा करण करावनहार करा रहा है, करावनहार करा रहा है, मैं कर रहा हूं, तो निरहंकारी होके रहेंगे, नहीं तो करने का अहंकार आ जाएगा। करण करावनहार करा रहा है तो बाबा भी साथ है, मैं कर्मेंद्र का मालिक भी बन के कर्म कर रहा हूं। तो इसीलिए हमारा जीवन हर चीज में विष्णु जी, जो विष्णु का जो चित्र है वो ज्ञान और योग का बैलेंस है। त्रिमूर्ति चित्र को देखो, एक तरफ ब्रह्मा बाबा, दूसरी तरफ शंकर, बैलेंस है ना बीच में। तो जितना जितना ज्ञान आत्मा ज्ञानित आत्मा बने उतना उतना फिर बाबा से योग लगाते योगी आत्मा, ज्ञान द्वारा श्रेष्ठ कर्म करे, योग द्वारा वे कर्म भस्म करे, ये दोनों का बैलेंस है। अच्छा, ब्रह्मा बाबा अभी संगम युग पर हमारा मन वचन कर्म पवित्र, इस समय की पवित्रता, शंकर द्वारा पिछली अपवित्रता को भस्म करना है, पिछले पाप कर्म भस्म करने हैं। तो इस मूर्ति को, त्रिमूर्ति को देखते हुए जैसे कि एक हमारा अपना जीवन आनंदपूर्ण बन जाता है, बैलेंस वाला बन जाता है। तो इसलिए जो हम बाबा से ले रहे हैं वो अपने आप को भी दे रहे हैं और दूसरों के पास भी पहुंच रहे हैं। तो फिर संपूर्ण, जब हम संपूर्ण मूर्ति बन गए जब, तो हमको फिर ये जो अलंकार है, अभी तो हथियार भी हैं तो अलंकार भी हैं। अभी संगम पर जब बैलेंस रख रहे हैं तो ये अलंकार है, परंतु साथ में ये इसको स्वदर्शन चक्कर असुरों का गला काटना, ये माया जीत बनने की गदा साथ में रखना, कीचड़ में रहते कीचड़ से नारे रहने का पुरुषार्थ करना, सेवा करके दुआएं लेना। अच्छा, तो इसलिए अब और पावरफुल बने तो फिर जो है दुर्गा जी का स्वरूप न केवल चार अलंकार है पर आठ अलंकार है, उसमें आठ में भी बैलेंस है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चार हैं अलंकार, चार हैं हथियार, तलवार हथियार है, सुदर्शन चक्र हथियार है, वो जो त्रिशूल है वो हथियार है, समझो फिक्कल जैसे एक गला काटने का वो हथियार है, और दूसरे कमल का फूल, ज्योत, कलश, वरदान का हाथ, अलंकार है, बैलेंस है। तो आठ हाथ में, चार हाथ में अलंकार हैं, जो यानी आत्मा के गुणों का, अंदर की शक्तियों का संगम सिंबल है, और बाकी चार हैं पिछले को खत्म करने का, श्रेष्ठ कर्म करके विकारों की उसको भस्म करना है। तो मशाल अगर भस्म भी करनी है विकर्मों को, योग ज्वाला, राइट। तो एक एक चीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितना भी बाबा हमको लक्ष्य दे रहे हैं, शक्ति स्वरूप बनना है तो भी बैलेंस है, लक्ष्मी नारायण बनना है तो भी बैलेंस है, ब्राह्मण है तो भी बैलेंस है, योग और ज्ञान जरूरी है जीवन में जितना। अच्छा, फिर जब संपूर्ण बन गए, लक्ष्मी जी के हाथ में कितने हथियार हैं? है कोई हथियार लक्ष्मी जी के हाथ में? कोई हथियार है? तो जब हम संपूर्ण बन जाएंगे तो अतीन्द्रिय सुख के रिजल्ट में एकदम न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। इसीलिए बैलेंस से ब्लिसफुल लाइफ है, ब्लेस्ड लाइफ है। तो ऐसा अपने जीवन को बनाने की प्रेरणा बाबा दे रहे हैं। और कल तो फिर बाबा से मिलन मनाने का दिन है, तो आज से ही तैयारी करेंगे ना। तो इसीलिए जितना बाबा से लेने के लिए तैयार है, उतना बैलेंस करना छोड़ने के लिए भी तैयार रहे। बाबा से जितना हमको ये हमको एक्सपेक्ट कुछ नहीं रखना है, बाबा को पता है क्या देना है, कंपेयर नहीं करना। ये तो हम किसी से भी कंपेयर करने की बात नहीं है, बाबा को हर एक की नब्ज पता है आत्मा को क्या चाहिए। तो हम एकदम निरसंकल्प अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होके न केवल बाबा से लेने के लिए बैठे हैं, परंतु अन्य सब आत्माओं को भी वो आत्मिक स्थिति में मदद कर रहे हैं वाइब्रेशंस को पावरफुल बना के रखने की। एक्सपेक्ट करेंगे तो अपने आप को ब्लॉक कर देंगे। डिटैच रहना है, बाबा को मालूम है हमको वाइब्रेशंस से बाबा को देना है या दृष्टि देके इंजेक्शन लगा देना, जो कभी बाबा की दृष्टि ऐसी है जैसे इंजेक्शन। अब इंजेक्शन लगा, आप दिखाई तो कुछ नहीं पड़ता, क्या हो रहा है, अंदर काम कर रहा होता है शक्ति। शक्ति उस वक्त तो दिखाई पड़ती नहीं, पर काम करती है पीछे, फिर पता चलता है। बाबा को मालूम है कि इन आत्मा को जो है डायरेक्ट मदद करनी है, इनडायरेक्ट मदद करनी है, कोई ना कोई ज्ञान की पॉइंट ऐसी टच हो जाती है तो फिर वो धन वो या शक्ति बन करके हमारे जीवन में काम आती है। कभी 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 हम कंपैरिजन में अपने आप को टेंशन में ले आते हैं, अच्छा बाबा ने इसको तो बहुत लंबी दृष्टि दी, इस तरफ तो बहुत देख रहा था, इस तरफ कम देखा। इसका मैं उनको देख रहा हूँ या अपने आप को देख रहा हूँ, मैं वाइब्रेशन से खींच लूं, और है तो सेकंड की बात। अच्छा कोई को बाबा सामने खड़े होकर के बात भी किया, हम तो इंतजार करते रहे, हमको तो बाबा ने दृष्टि भी नहीं दी। कभी इस कंपेरिजन नहीं करना है। अब डॉक्टर को पता है कि इस आत्मा को इसको इतनी चीज की जरूरत है, गोली की जरूरत है सिर्फ, उसको गोली लिख के दे दी। दूसरे को इसको इंजेक्शन की जरूरत है, एक इंजेक्शन लगाया तो हाथ पकड़ा जा टच किया। तीसरे को ऑपरेशन किया, 4 घंटे लग गए, अब मेरा भी ऑपरेशन करे क्या। तो मुझे कंपेरिजन नहीं करना है, उसको मालूम है कि मुझे आत्मा के अंदर जो शक्ति है उसको सिर्फ टच करना है, भरी हुई है, टच करना है, जो पीछे काम करेगी जरूर। मुरली है, प्यार भरे बोल है, अभी तो बाबा ज्ञान नहीं सुनाते ज्यादा, टाइम बदलता गया, क्योंकि अभी बाबा कहते हैं ज्ञान जो सुनाना था मैंने बहुत सुनाया, अब योग मुझे लगाना है या आपको लगाना है। तो आप हम बैठेंगे तो योग युक्त होके रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आत्मा के उसको संबंध का अनुभव होगा ना। वैसे भी जब बाबा सामने नहीं होते तो जितना जितना हम योग युक्त हैं उतना हमको गुणों का अनुभव ज्यादा होता है ना। तो सामने होते हैं तो अपने योग युक्त तो भूल गए, एक्सपेक्टेशन में चले गए, तो योग युक्त तो नहीं रहे। योग युक्त को गुप्त भी शक्ति मिल जाती है अपने आप। इसीलिए एकदम डिटैच होकर के बाबा को मालूम है कि आत्मा को क्या चाहिए, चाहे वाइब्रेशन से, चाहे दृष्टि से, चाहे मधुर महावाक्य से। आत्मा को जितनी जो सूक्ष्म चीज है वो कोई सामने से नजदीक की बात नहीं, कहां भी बैठे मिल सकती है। भाई फूल है दिखाई पड़ता है तो सामने दिखाई पड़ रहा है, कलर आंखों से देखेंगे। अच्छा और थोड़ा देखना है उसकी और सूक्ष्मता है टच करके देखेंगे भाई सच्चा है कि झूठा है। खुशबू आप टच करते हैं क्या? खुशबू आपको टच करती है तो बाबा को आत्मा को कुछ बाबा की जो सूक्ष्म शक्ति है उसको आत्मा को टच करना है तो कहां भी बैठे होंगे टच हो जाएगी। ये आत्मा का पिता परमात्मा से मिलन है, उसकी उसका तरीका न्यारा है, जैसा मैं चाहता हूं वैसे नहीं होगा इसलिए मैं उस बात को से न्यारा हो जाऊं, फिर भरपूर होकर के संतुष्ट होके आएंगे। अगर हम इंतजार कर रहे हैं तो हमारी बुद्धि उस इंतजार में है तो इंतजाम नहीं है बाबा से लेने का। इसीलिए न्यारा और प्यारा हम अपने मन से बाबा की सो जो मिला हुआ है उस प्यार में खोए हुए हैं तो और मैग्नेट की तरह खींच लेंगे। नहीं मिला है उसको याद कर रहे हैं, औरों को मिल रहा है उसको याद कर रहे हैं तो मैं बीच में दीवार बना रहा हूं ना। मैग्नेट में तो है खींचने की ताकत पर मैंने थोड़ी भी अगर रस्ट रख ली तो मैग्नेट होते हुए मैं खींच के नहीं पहुंचूंगा। तो इसलिए मुझे अपने आप को बाबा का प्यारा बन करके भी बैठना है, बाबा मेरे को प्यार करता है इसमें भी बैठना है, इंतजार नहीं करना प्यार करना है। प्यारा बन के बैठना है तो बाबा के प्यार का अनुभव ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके ओम शांति।